नमस्कार दोस्तों, इनसाइट के सभी पाठकों को मेरा सच्चे दिल से नमस्कार। मैं बहुत दिनों से अंतरवासना की सेक्स कहानियाँ पढ़ती आ रही हूँ। बहुत बार सोचा कि आप सभी के साथ अपने कुछ रंगीन अनुभव साझा करूँ, पर किसी कारण या फिर झिझक के मारे अब तक नहीं कर पाए। फिर आपने एक करीबी दोस्त के समझाने पर आखिर मैंने हिम्मत की और आज मैं आप सबके लिए अपनी ज़िंदगी के कुछ मज़ेदार किस्सों को इस सेक्स कहानी के माध्यम से सुना रही हूँ। उम्मीद है कि आपका मनोरंजन होगा और मेरी सेक्स कहानी को पढ़कर आपके जिस्म में भी हलचल होगी। तो मेरा नाम रश्मि है और इस वक्त मैं एक 32 साल की शादीशुदा औरत हूँ। मेरे पति का नाम शरद है और वो 38 साल के हैं। शरद सरकारी नौकरी में है और आयकर विभाग में काम करते हैं। मैं अपने बारे में कुछ कहूँ तो मैं वैसे तो लखनऊ की रहने वाली हूँ, पर मैंने अपना BBA MBA की पढ़ाई दिल्ली से की है। मार्केटिंग में MBA करने के बाद मुझे दिल्ली के एक बड़े कॉरपोरेट कंपनी में जॉब मिल गई और मैं पिछले 8 साल से उसी कंपनी से जुड़ी रही। अब से 3 साल पहले घर वालों की पसंद से मेरी शरद से अरेंज्ड मैरिज हुई। उसका दिल्ली में ही अपना मकान है और शादी के बाद से हम दोनों उसी घर में रहते हैं। मैं और शरद हम दोनों ही काफ़ी अच्छा कमा लेते हैं और हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी है नहीं। 2 साल पहले शरद ने मुझे मेरे बर्थडे पर एक बहुत अच्छी सी कार गिफ्ट की और उसे चलाने के लिए मैंने एक ड्राइवर रखा। उसका नाम असीम है और वो हमारे ही मकान के पीछे सर्वेंट क्वार्टर में रहता है। उसकी उम्र कुछ 41 साल की होगी और अभी तक शादी नहीं की उसने। हमारा मकान काफ़ी बड़ा है तो शरद ने ऊपर का एक कमरा 2 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स किरणदीप और सुरजीत को किराए पर दे दिए। दोनों ही यूनिवर्सिटी में MCOM की पढ़ाई कर रहे हैं और साथ ही अपना खर्चा चलाने के लिए पार्ट टाइम जॉब्स करते थे। शरद ने उन्हें वो जॉब्स दिलाने में मदद की तो वो दोनों शरद को बहुत मानते थे। मुझसे भी उनकी खूब बनती थी। दोनों ही करीब 25 साल के होंगे। दोनों ही बहुत मौज मस्ती करने वाले थे और अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेकर आते थे। शरद भी इस बात को जानते थे और जवान लड़कों की मस्ती समझकर कुछ कहते नहीं थे। रविवार को शरद, किरणदीप, सुरजीत अक्सर ड्रिंक्स लेते थे और कभी कभी मैं भी उनके साथ कुछ पैग्स लगा लेती थी। दोस्तों, मैं शुरू से ही बहुत खुले और आज़ाद विचारों की लड़की रही हूँ। कॉलेज के दिनों में भी मेरे बॉयफ्रेंड हुआ करते थे। शादी से पहले मैंने एक बार शरद को बता दी थी और उसे भी मेरे पास्ट से कोई लेना देना नहीं था। उसने भी मुझे बताया था कि उसकी भी गर्लफ्रेंड थी। वैसे बड़े शहरों में तो ये आम बात है। वैसे मैं आपको बताऊं कि मेरा कद 5 फुट 7 इंच लंबा और मुझे मेरी हाइट बहुत अच्छी लगती है। मेरा रंग एकदम गोरा 34, 28, 36 का फिगर है जो मेरे लंबे कद की वजह से मुझ पर खूब जचता है। अपने स्वभाव को लेकर अगर कुछ कहूँ तो मैं एक सरल और सीधी औरत हूँ। बचपन से पढ़ाकू रही हूँ, साथ ही अपनी निजी ज़िंदगी में भी मैंने अब तक भरपूर मज़े लिए हैं। प्राइवेट लाइफ में भी मेरी और शरद की ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। शरद मेरी जुदाई का कोई मौका नहीं छोड़ता था। अपने काम के सिलसिले में हम दोनों ही बहुत बिजी रहते हैं, पर हर वीकेंड पर एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। हर वीकेंड पर हम कभी फिल्म्स, कभी अच्छी जगह घूमने जाते और अकेले होने पर अब भी मज़े से सेक्स का आनंद लेते हैं। मेरी अब तक की ज़िंदगी बहुत मस्त चल रही है और मैं अपने लाइफ से बहुत खुश हूँ। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जब समय बहुत अच्छा चल रहा हो तो वो आने वाले कठिन समय का ही एक हिस्सा होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। अब से 2 साल पहले मेरे हस्बैंड को उसके ऑफिस से उसके ट्रांसफ़र की खबर मिली। सरकारी नौकरी में तो यह आम बात होती है, पर पिछले 14 साल से मेरे पति दिल्ली में ही थे। हमने भी ऐसा मान लिया था कि अगर अब तक नहीं हुई तो शायद आगे भी उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा। इस बात पर हमने कभी विचार भी नहीं किया था। तबादले की खबर हम दोनों के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। एक तरफ तो तबादले के साथ शरद की तरक्की भी हुई, जिससे उसकी आमदनी के साथ उसका प्रमोशन भी हुआ, लेकिन साथ ही हमें अपना घर, यहाँ के दोस्त, ज़िंदगी छोड़कर जाने का गम भी था। मैं भी अपने करियर के चरम पर थी और हाल ही में मेरा भी प्रमोशन हुआ था। अपनी बसी बसाई ज़िंदगी छोड़ जाने से मैं बहुत परेशान थी। शरद, इस बारे में बातचीत करने पर हमने फैसला किया कि मैं यहीं दिल्ली में रहकर अपना काम और घर संभालूंगी और शरद अपने नए ट्रांसफ़र पर जाएगा। उसने मुझसे वादा किया कि वो हर 2-3 महीने में मुझसे मिलने आएगा। इस प्रकार हम दोनों ने इस नई परिस्थितियों को स्वीकार किया और अपने आने वाले कल के बारे में सोचने लगे। शरद के जाने के 1 हफ्ते पहले हम दोनों पास ही के एक हिल रिजॉर्ट पर कुछ दिन छुट्टियां मनाने गए। मैंने सोचा कि शरद के जाने के पहले के टाइम बिताने का हमारा आखिरी मौका हो सकता है। रिजॉर्ट दिल्ली के पास ही था, एक हिल स्टेशन पर, जहां हम पहले भी बहुत बार जा चुके थे। वो हमारे घर से केवल 3 घंटे की दूरी पर था और अक्सर हम किसी वीकेंड पर वहां जाया करते थे। इस बार की हमारी यात्रा कुछ ज़्यादा समय के लिए थी। हमने 4 दिन के लिए वहाँ कमरा किराए पर लिया और पूरे 4 दिन तक उसे भरपूर रूप से इस्तेमाल करने का सोचा था। जहाँ तक शरद को मैं जानती थी, वो इन 4 दिनों में मेरी भरपूर जुदाई करने के इरादे से मुझे वहाँ कर लेकर गया था। उसने अपने साथ कॉन्डम के बहुत सारे पैकेट्स लिए थे, साथ ही मैंने भी अपने साथ लुब्रिकेंट की बॉटल ली। शादी के बाद से हम दोनों जुदाई का बहुत मज़े से आनंद लेते थे और बिस्तर पर एक दूसरे को सेटिस्फाई करते थे। वो 4 दिन कैसे बीत गए हमें पता भी नहीं चला। हम साथ वक्त बिताने में इतने मगन हो गए कि आने वाली सिचुएशन के बारे में कुछ समय के लिए सही पर भूल गए। घर वापस आते वक्त हमें यह एहसास हुआ कि अब बस 2 ही दिन बचे हैं और आज से 2 दिन बाद हम दोनों अलग अलग शहरों में होंगे। दोस्तों, आप ये कहानी freesexkahani.com पर सुन रहे हैं। जाने से 1 दिन पहले मैंने शरद के लिए एक सरप्राइज़ पार्टी का इंतज़ाम किया। उसके ऑफिस के सारे दोस्तों को घर पर खाने पर बुलाया। मैंने सुरजीत और किरणदीप की मदद से पार्टी प्लान की थी। रोज़ की तरह जब शरद जिम से वापस आया तो उसे हमने सरप्राइज़ दिया। उसकी तरक्की की खुशी में मैंने दी इस पार्टी से, वो बहुत खुश हुआ। उस शाम मैंने बहुत अच्छे काले रंग की सिल्क की साड़ी पहनी थी, साथ ही मैं एक बैकलेस और स्लीवलेस ब्लाउज पहना। शरद को खुश करने के लिए मैं हर कोशिश करने में लगी थी और बहुत हद तक सफल भी हुई थी। पार्टी देर रात चली, साथ साथ ड्रिंक्स और मेरे बनाए हुए खाने का लुफ्त उठाया जा रहा था। शरद के दोस्तों के साथ उनकी बीवियां भी आई थीं और शुक्र था वो कुछ काम में मेरा हाथ भी बटा रही थी। पार्टी में ड्रिंक्स बनाने और सर्व करने का जिम्मा सुरजीत और किरणदीप ने उठाया। सब कुछ अच्छे से मैनेज हो रहा था। देर रात तक पार्टी चलने के बाद सब एक एक करके अपने घर की ओर निकलने लगे। सभी जाते हुए शरद को बधाई और मुझे पार्टी रखने के लिए शुक्रिया कहने लगे। सब लोगों के वहाँ से जाने के बाद जब शरद और मैं अकेले हुए, तब शरद को मैंने अपनी बाहों में भरा और कहा, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी शरद, काश कि मैं तुम्हारे साथ आ पाती। ये कहकर मैंने उसे देखा तो उसने मेरी तरफ प्यार से देखा और हम दोनों एक दूसरे को बड़े ही प्यार से होंठों पर चूमने लगे। थोड़ी ड्रिंक्स लेने के कारण शायद हम दोनों ही कुछ पल में सेक्स के नशे में आ गए और बहुत कामुक होकर एक दूसरे को चूमने लगे। उसका एक हाथ मेरी नंगी पीठ को सहला रहा था, दूसरा हाथ मेरे उभरे हुए चूतड़ों पर था। मैं दोनों हाथों से उसकी गर्दन पकड़कर उसे चूमे जा रही थी और अपनी पीठ और गांठ पर उसके स्पर्श से उत्तेजित हो रही थी। इसी प्रकार किस करते हुए मैं धीरे से एक हाथ से उसकी जीन्स के ऊपर से ही लंड सहलाने लगी। जीन्स के अंदर से ही मैं शरद के फूलते लंड को महसूस कर पा रही थी। शरद का लंड धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और अंदर से उफान मार रहा था। उस वक्त मेरे मन में बस एक ही ख्याल था कि मुझे शरद को पूरी तरीके से खुश करना है। ये रात हमारी आखिरी रात है और फिर न जाने कितने दिनों या महीनों तक हम फिर नहीं मिल पाएंगे। यही सोचते हुए मैंने शरद को सोफे पर बिठाया और उसके सामने घुटनों पर बैठ गई। जीन्स के ऊपर से मैंने अपना चेहरा उसके लंड के ऊपर रखा और उसे अपने गालों से छूने लगी। मेरी हेल्प करते हुए उसने अपनी जीन्स उतार कर नीचे कर दी। मैं भी उसकी चड्डी उतारने लगी। शरद का लंड सामने देखते मैं उसे होठों से चूमने लगी और उसे अपने प्यार का एहसास दिला रही थी। उसका लंड 5.5 इंच का है, सामान्य लंबाई और मोटाई का। शादी से पहले भी मैंने शरद से बड़े लंड के साथ सेक्स के मज़े लिए, पर फिर भी शरद मुझे हमेशा सेटिस्फाई करता है। वो रोज़ जिम जाता है, शरीर का और सेहत का बहुत ध्यान रखता है, उसमें भरपूर स्टेमिना है। आसानी से 2-3 बार मेरी जुदाई कर लेता था। मुझे भी उससे जुदवाने में बहुत मज़ा आता था और शरद की जुदाई से मैं हमेशा खुश होती थी। उसे भी मेरी ज़रूरत का पूरा ख्याल था और वो जानता था कि मुझे सेक्स बहुत पसंद है। धीरे धीरे उसका लंड बड़े स्नेह से चूस रही थी और वो इसका आनंद ले रहा था। मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कितनी देर उसका लंड चूसती रही। मैं अपने कार्य में पूरी तरीके से मगन थी कि उसकी टांगें अकड़ने लगी। मैं समझ गई कि वो अब झड़ने वाला है। मैं तेजी से उसका लंड अपने हाथ में लेकर हिलाने लगी। कुछ ही पल में वो मेरा नाम लेता हुआ अपने लंड से वीरे की पिचकारियां छोड़ता हुआ झड़ गया। कुछ समय के लिए मैं वैसे उसके सामने बैठी रही और उसे संभलने का मौका दिया। फिर जब वो थोड़ा संभला तो उसने मुझे अपनी ओर बुलाया, मुझे अपनी गोद में बिठा लिया। हम दोनों एक दूसरे को चूमने लगे। चूमते हुए धीरे धीरे मेरे कपड़े उतरने लगे। मेरा पल्लू तो कपका नीचे गिर चुका था और अब तो मेरे ब्लाउज भी शरद ने उतार कर ज़मीन पर फेंक दिया। बैकलेस ब्लाउज पहनने की वजह से मैंने आज कोई ब्रा नहीं पहनी थी, तो मेरे दोनों बूब्स अब शरद के हवाले थे। वो उन्हें दबाए जा रहा था और उसके साथ ही मुझे चूमता जा रहा था। मैं भी इन सब का पूरा आनंद लेते हुए उसके सोए लंड को सहलाकर उसे फिर से जगाने की कोशिश में थी। उसने मुझे वहाँ से उठने को कहा और मेरा हाथ पकड़कर अपने अंदर बेडरूम में लेके जाने लगा। मैं अधनंगी उसके पीछे पीछे साथ में चल दी। अंदर जाते उसने मेरी अधखुली साड़ी उतारी और बिस्तर पर मुझे लिटाकर मेरे ऊपर चढ़ गया। मुझे किस करते हुए अब भी मेरे बूब्स उसके हाथों से मसले जा रहे थे। नीचे मेरी जूत एक्साइटमेंट के मारे गीली हो रही थी। वो जल्दी नीचे हाथ फेर कर मेरी पैंटी के ऊपर से मेरी जूत सहलाने लगा। अब तक मैं मस्त होकर इस सब का आनंद लेते हुए बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने बड़ी तेज़ी से मेरी पैंटी को मुझसे अलग किया और सीधे नीचे जाकर मेरी गीली जूत को चूमने लगा। कुछ देर मेरी जूत चाटने के बाद वो मेरे पैरों के पास आकर बैठ गया। मैंने भी उसका वेलकम करते हुए अपने दोनों टांगों को खोल दिया। मेरा ये इशारा ही उसके लिए काफ़ी था। एक पल भी जाया न करते हुए उसने लंड मेरी जूत पर रख दिया। वो तो इतनी गीली थी कि उसके एक ही धक्के में पूरा लंड आसानी से चला गया। मुझे बहुत तेज़ी से चूमने लगा शरद। रुकने के कोई मूड में नहीं था वो। मैं भी अपने टांगे खोल कर जुदाई करवा रही थी। उसके तेज़ झटके हो रहे थे और मैं पागलों की तरह मेरी जूत चूत रहा था। मैं झड़ने वाली थी। मैं ज़ोर ज़ोर से झड़ने लगी, पर अब भी शरद में दम बाकी था और मेरी एक टांग अपने कंधे पर रखकर मुझे चूमने लगा। शरद की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी। चाहे कुछ भी हो जाए, वो मुझे पूरी संतुष्टि देता था। मैं अब दूसरी बार झड़ने वाली थी। तभी शरद ने मेरी टांग नीचे की और मेरे ऊपर पूरी तरीके से लेट गया। उसकी रफ्तार अब भी कम नहीं हुई थी और अब वो ज़ोर से रुक रुक कर मुझे चूमने लगा। जल्दी उसके पैर अकड़ने लगे और वो झड़ने वाला था। उसके झटके और तेज़ हो गए। उसके साथ ही वो लंबी पिचकारियाँ मारते हुए मेरी जूत में झड़ गया। सेक्स के वक्त शरद अक्सर कॉन्डम का इस्तेमाल करता था, पर जब कभी हमने बिना कॉन्डम की जुदाई की, मैं हमेशा उसे अपने वीरे से मेरी जूत भरने को कहती थी। हम दोनों को भी बच्चे नहीं चाहिए, इसलिए बहुत कम बार बिना कॉन्डम के सेक्स किया और जब भी करते थे गर्भ निरोधक गोली का सेवन करते थे। लेकिन मुझे अपनी जूत में उसका वीरे लेना बहुत पसंद था। ये बात शायद हर औरत समझ सकती है कि कोई मर्द के द्वारा चुदने के बाद जब वो अपनी जूत को लंड से निकले वीरे से भर जाती है तो उसका एहसास चाहकर भी शब्दों में बयान नहीं हो पाता। चुदाई के बाद हम दोनों एक दूसरे की बाहों में लेटकर चुपचाप अपनी सोच में डूबे रहे। दोनों ही अभी के अभी हमारी जुदाई की पूरी तरह से संतुष्ट और थके हुए थे। अब मैं सोच रही थी कि उस वक्त शरद क्या सोच रहा होगा। जब अगली बार उससे मिलूंगी तो उससे पूछूंगी उस रात शरद ने क्या सोचा। फिर हम दोनों में दोबारा गर्मी आई। उसने मुझे एक बार फिर जोड़ा। फिर थक हार कर हम दोनों एक दूसरे की बाहों में सो गए। अगली सुबह मैं बहुत देर से उठी। मैंने देखा कि शरद मेरे बगल में नहीं था और मेरे ऊपर एक कंबल भी था। शायद शरद ने रात में उठकर मुझ पर एक कंबल डाला। मैं जल्दी से उठकर बाथरूम गई, फ्रेश हुई, नाइटी पहनकर सामने के कमरे में आई। दोपहर के 12 बज चुके थे। इतनी देर सोए रहने पर मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। शरद कहीं दिख नहीं रहे थे, पर कमरे में बड़े बड़े 3 बाघ थे। तभी वहाँ से हमारा ड्राइवर असीम आया। अरे असीम, शरद कहाँ है? ये सब क्या है? किसके बैग से ये? असीम ने कहा, मैडम वो भैया को सुबह ही कॉल आया था कि उन्हें आज शाम को नहीं, अभी तुरंत निकलना होगा। क्या? हाँ मैडम, वो बाहर किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, मैं बैग्स लेने अंदर आया हूँ। इतने में शरद अंदर आया। अच्छा हुआ तुम उठ गई बेबी, मुझे जल्दी निकलना है, तुम सो रही थी, मैंने तुम्हें उठाया नहीं। सच्चाई एकदम से मेरी आंखों के सामने आकर रुक गई। कहीं ना कहीं मन में ऐसा लग रहा था कि ये सब एक सपना है, अब भी कुछ वक्त है, पर ऐसा नहीं था। शरद ने मुझे गले लगा लिया और कस के मुझे पकड़ के रखा। मैं तुझे बहुत याद करूँगा जान, अपना ख्याल रखना। हाँ और आप भी। दोस्तों आप ये कहानी freesexkahani.com पर सुन रहे हैं। शरद ने कहा, अपने काम पर ध्यान देना, मैं पहुंचकर वहां सेटल होते ही असीम को वापस भेज दूंगा। कुछ दिन के लिए असीम के जाने तक सुरजीत या किरणदीप तुम्हारे ऑफिस छोड़ देंगे, तुम चिंता मत करना, तुम्हें कुछ भी लगे तो उनसे कह देना। मैं शरद को चूमते हुए बोली, अरे बाबा बस बस, आप मेरी फिक्र मत करो, मैं सब मैनेज कर लूँगी, आप बस अपना ध्यान रखना और जाते ही मुझे फ़ोन करना। शरद के बैग्स कार में रखने से मैंने असीम की मदद की और एक आखिरी किस के साथ वो कार में बैठकर निकल गया। उसकी कार जाने तक मैं वहीं खड़ी रही और आखिरी पल तक उसे देखती रही। अंदर वापस आते ही मुझे एक पल बिल्कुल अकेला लगने लगा, पर मैंने अपने आप को बहुत समझाया और वापस आकर बिस्तर पर लेट गई। रात की थकान अब तक नहीं उतरी थी और इसी कारण मुझे फिर से नींद आ गई। कहते हैं हर मुसीबत एक नया अवसर प्रदान करती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था जिसका मुझे उस वक्त कोई अंदाज़ा नहीं था। ज़िंदगी का तराजू हमेशा समान नहीं होता। जब कोई हमसे दूर जाता है तो किसी और के पास आने की शुरुआत होती है। आने वाले टाइम में बात मुझे भी समझ आई, पर उस वक्त मैं सबसे बेखबर चैन की नींद सो रही थी। आने वाले वक्त में क्या हुआ वो मैं आपको अपनी अगली कहानियों में बताऊंगी। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।